हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सीक्रेट एजेंसी के बाहर जब मिस्टर गुप्ता ने लावण्या को उसके और अमन की फैमिली को मेले में होने की बात बताई, तो वो वहाँ से तुरंत अपने घर को निकल गई। उसके घर पर ताला लगा था। वो वहाँ से अमन के घर गई। वहाँ पहुँचकर जब उसने गार्डन में अपनी और अमन की फैमिली को साथ देखा, तो उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। थैंक गॉड, ये सब बिल्कुल ठीक है। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। ये सब यहाँ है, इसका मतलब अमन भी घर पर होगा, लावण्या ने अपने मन में कहा और अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। लावण्या को वहाँ देखकर प्रेरणा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये लो, लवी भी आ गई। दोनों लव बर्ड्स रात से कहाँ गायब हो? मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुमने हमेशा की तरह मेरा कॉल पिक नहीं किया। वो लावण्या को देखते ही शिकायतें करने लगी। अरे बस भी करो, हमेशा मुझे टोकती रहती हो। बच्चों के आते ही मैं उनसे शिकायतें करने लग जाता हूँ। अब तुम भी वही कर रही हो, कम से कम चैन से बैठने तो दो, गौतम जी बोले। चेतना से पता चला रात को अमन वहीं पर मौजूद था। वो वहाँ था तो तुम भी उसी के साथ होगी। तुम्हारे साथ वो भी घर आया है ना, तेजो जी ने पूछा। बातों ही बातों में तेजो जी के मुँह से अमन के उस समय वहाँ ना होने की बात सुनकर लावण्या का चेहरा उतर गया। हम दोनों साथ ही थे, अचानक ब्लास्ट हो गया और फिर हम दोनों वहाँ से निकल गए। अमन की मीटिंग होने की वजह से अमन ऑफिस में ही है, लावण्या ने बुझी आवाज में कहा। उसके बोलने के तरीके भर से प्रेरणा जी सब समझ गईं। तुम खड़ी क्यों हो? काफी थकी हुई नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ मॉम, सब ठीक है। किसी जानने वाले ने बताया आप लोग भी कल रात वहाँ पर मौजूद थे। हम दोनों को आपकी फिक्र होने लगी तो अमन ने मुझे यहाँ भेज दिया, लावण्या कुर्सी पर बैठते हुए बोली। उसके कहते ही चेतना जी ने झट से कहा, जरूर आंशी ने बताया होगा हम लोग वहाँ पर हैं। कल रात को वो हमें मिली थी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल मासूम लगती है। चेतना जी का इस तरह आंशी की तारीफ करना लावण्या और उसके पेरेंट्स को असहज महसूस करवा रहा था। उनके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए तेजो जी को देर ना लगी। उन्होंने बात को बदलते हुए कहा, कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा लावण्या बेटा, तुम यहाँ आ गई तो ऐसा करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, साथ में घर पर टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, कल रात से हम भी यहीं पर हैं, गौतम जी ने बताया। वहाँ काफी अफरातफरी हो गई थी, सिक्योरिटी टीम ने हमें बाहर निकाल दिया, लेकिन हम सब काफी घबरा गए थे। ऐसे में तेजो जी ने यहाँ आने का सुझाव दिया। थैंक यू सो मच दादी, लावण्या ने तेजो जी की तरफ मुस्कुराकर कहा। अरे अब इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम इस घर का हिस्सा बनने वाली हो और हमारी फैमिली अलग थोड़ी ना है। आगे से ये थैंक यू वगैरह मत बोलना, तेजो जी ने जवाब दिया। वो काफी समझदारी से परिस्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी। उनके बर्ताव से प्रेरणा जी को कुछ राहत मिल रही थी कि लावण्या को उनके परिवार ने पूरे दिल से अपनाया है। तेजो जी ने चेतना जी का हाथ पकड़ा और इशारे से उन्हें उन सबको वहाँ रुकने के लिए कहा। उनके कहने पर चेतना जी बोली, हाँ बीजी बिल्कुल ठीक कह रही है, पता नहीं अमन भी कब तक आएगा। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए तेजो जी ने कहा, लावण्या तुम ऐसा करो, चेंज कर लो, अमन ने तुम्हारे लिए शॉपिंग की थी, उनमें से पहन लेना। क्या, अमन ने मेरे लिए शॉपिंग की थी? लावण्या को अभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से पूछा, इसमें हैरान होने जैसा कुछ नहीं है बेटा, तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हो, फिर ये सब चीजें तो बहुत सामान्य हैं, तेजो जी ने कहा। चलो आओ मैं तुम्हें कपड़े दे देती हूँ, चेतना जी ने कहा और उठकर अंदर जाने लगी। उनसे कुछ दूर जाने के बाद वो बड़बड़ाकर बोली, ये बीजी भी ना, क्या जरूरत है झूठ बोलने की, अमन खुद के लिए शॉपिंग नहीं करता, इसके लिए क्या खाक कपड़े खरीदेगा। ये तो जबरदस्ती बीजी ने कपड़े ऑर्डर कर दिए थे और नाम उसका लगा दिया। हाय मेरा मासूम बच्चा, उसे तो पता भी नहीं उसके पीछे से उसके खिलाफ क्या क्या साजिशें की जा रही हैं, वो भी कोई और नहीं खुद उसकी दादी कर रही है। शायद मैं ही ओवरथिंकिंग कर रही हूँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, अमन ने लवी के लिए कपड़े खरीदे, वो इस शादी को लेकर सीरियस है। तेजो जी का बिहेवियर हमेशा से ही काफी फ्रेंडली रहा है, तो चेतना जी भी आज नॉर्मल बिहेव कर रही है, उन्होंने हमें यहाँ रुकने का भी बोला, प्रेरणा ने सोचा। तेजो जी की समझदारी से वहाँ का माहौल काफी अच्छा था। उनके बर्ताव और खातिरदारी से प्रेरणा जी के मन में जो डर था वो भी दूर हो गया था। लावण्या उनके साथ थी पर मन ही मन उसे अमन का ही ख्याल था। उसने बीच में उसे कॉल करने की भी कोशिश की पर अब उसका फोन बंद जा रहा था। सुबह के 11 बज रहे थे, अमन आंशी के साथ उसके वार्ड में मौजूद था। आंशी नींद से जाग गई थी। अमन अभी भी उसके सब बताने के इंतजार में था। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी छाई हुई थी। क्या तुमने मेरी फैमिली को इन्फॉर्म किया? आंशी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मेरे पास किसी के नंबर नहीं है। तुम्हारा फोन ब्लास्ट में टूट गया था, अमन ने जवाब दिया और कहा, अच्छा, अपने पापा या घर के नंबर बताओ ताकि मैं उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकूं। उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होंगी। किसी को कोई फिक्र नहीं हो रही होगी। मेरी दादी का ट्रीटमेंट चल रहा है। कल रात पापा उन्हें बाहर लेकर जाने वाले थे। हाँ, अर्जुन जरूर परेशान होगा, आंशी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में मायूसी थी। तो अर्जुन के ही नंबर बता दो, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो आ जाएगा तो मैं यहाँ से जा पाऊंगा। आंशी ने उसकी बात पर हामी और उसे अर्जुन के नंबर बताए। अमन ने कॉल करके फोन स्पीकर पर कर दिया। मैं आंशी का बॉस बोल रहा हूँ, वो मेरे साथ है, अमन ने उसके फोन उठाते ही कहा। और ये बताने का टाइम तुम्हें अब मिला है? मैं पूरी रात से उसे ढूंढ रहा था। एक बार कॉल करके बता नहीं सकते थे क्या? अर्जुन ने परेशान स्वर में कहा। वो ठीक तो है ना? आंशी ने इशारे से अमन को कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने जवाब में कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि सर मुझे किसी बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए कह रहे थे। बस उनके साथ वहीं पर हूँ, तुम पापा को बता देना। मैं सच में तुम्हारे लिए घबरा गया था। वहाँ ब्लास्ट हो गया और तुम मुझे नहीं मिली। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया आंश, अर्जुन ने भावुक होकर कहा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ब्लास्ट के टाइम अफरातफरी मच गई थी और इसका फोन मेले में गिर गया। हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए और मैं इसे यहाँ ले आया। मेरा फोन भी चार्ज नहीं था। यहाँ फोन चार्ज करने के बाद पहले हमने तुम्हें कॉल किया है, अमन ने जवाब दिया। आंशी की अपडेट मिलने के बाद अर्जुन को भी राहत महसूस हो रही थी। तू थका हुआ लग रहा है, आराम कर लेना। आई एम सॉरी टू, मैं तुझे पहले नहीं बता पाई। उसे परेशान देख आंशी को बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं, तू ठीक है, यही काफी है, अर्जुन ने जवाब दिया। आंशी के बारे में पता चलने के बाद अर्जुन ने कॉल कट कर दिया। उससे बात होने के बाद अमन ने आंशी की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुमने उससे झूठ क्यों बोला? तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट नहीं लगी है जो दो दिन में ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने तुम्हें एक महीने के लिए रेस्ट के लिए कहा है। वो काफी परेशान था। इस वक्त उसे बताती तो और घबरा जाता। ऊपर से पापा और दादी भी यहाँ नहीं हैं। डॉक्टर जब जल्दी छुट्टी दे देंगे तो उन्हें भी यकीन हो जाएगा मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। तब तक आप तो है ना मेरे पास?
आंशी की बात सुनकर अमन ने मुंह बनाया और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, हाँ, अब इसे मैं याद आ रहा हूँ। पहले कहाँ गई थी जब सब सच बताना था, और अभी भी कुछ नहीं बता रही। मुझे भूख लगी है, आंशी ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा। ठीक है, मैं खाना लेकर आता हूँ, पर खुद से उठने की कोशिश मत करना। डॉक्टर ने तुम्हें कंधा हिलाने से मना किया है। अगर मैं उठूंगी नहीं तो खाऊंगी कैसे? अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर आ गया। वो कुछ ही देर में आंशी के लिए सूप और खिचड़ी के साथ वहां पहुंचा। ये हॉस्पिटल है, कोई फाइव स्टार होटल नहीं जो तुम्हारे लिए चाइनीज या इटालियन ऑर्डर कर देता, अमन ने जवाब दिया। वो आंशी के पास आया और कहा, रुको, मैं उठने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और हाँ, गलत इंटेंशन से टच नहीं कर रहा तो लेक्चर मत देना। आंशी ने पलके झपकाकर उसकी बात पर हामी भरी। वो आंशी के पास आया और उसे सहारा देकर उठाने लगा। उन दोनों के लिए ही सिचुएशन काफी ऑकवर्ड थी, जहां दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उसे बैठाने के बाद आंशी ने कहा, मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं खाना कैसे खाऊंगी? तुम्हारे एक हाथ में चोट लगी है, तुम आराम से खा सकती हो, बहाने मत बनाओ। तुम कितना रूड हो, कभी प्यार से बात करते हो तो कभी, आंशी ने मुंह बनाकर कहा और खाना खाने की कोशिश करने लगी। उसे खाना खाते हुए उसके बाल उसे परेशान कर रहे थे। उसे परेशान होता देखकर अमन ने कहा, तुम इन्हें बांधकर नहीं रख सकती क्या? आप इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? लड़कियां ज्यादातर अपने बालों को खोला ही रखती हैं। ऐसे नहीं, मेरी हेल्प कर दे, बस कब से मुझे ही ताने मार रहे हैं। उसकी बात सुनकर अमन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और चेयर से उठा। वो पीछे आकर आंशी के बालों की चोटी बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो आपको चोटी बनाना भी नहीं आता? आंशी ने उसे परेशान करने के लिए कहा। हाँ, वो क्या है ना कि मुझे अपने घुटनों तक लंबे बालों को खुला रखना ही पसंद है मिस जिंदल, तो मुझे चोटी बनाना कैसे आएगा, अमन ने आंखें घुमाकर कहा। ठीक है, मैं बता, आंशी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अमन ने अपने फ़ोन में चोटी बनाने का ट्यूटोरियल वीडियो शुरू कर दिया था। उसे देखकर उसने आंशी के बालों में मैसी चोटी गूंथ दी। मेरे पास रबड़ बैंड नहीं है, इसलिए इसे नीचे से ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। इतना कर दिया है तो खाना भी खिला दीजिए प्लीज़। अमन आंशी के पास आया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। आंशी को खाना खिलाते हुए अमन उसे काफ़ी गौर से देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, तुम क्यों कर रही है ये सब? मुझे तुमसे दूर रहना है और तुम हो कि मेरे पास आते जा रही हो। हम दोनों का एक होना कभी पॉसिबल नहीं है। बस हो गया, मेरा पेट भर गया। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, यहाँ नर्सेज हैं मेरी केयर करने के लिए। आंशी ने देखा अमन के चेहरे पर थकावट थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर आप भी कुछ खा लीजिए ना, आंशी ने कहा। अमन ने उसकी बात पर हामी भरी और वहाँ से जाने के लिए खड़ा हुआ। तभी अचानक आंशी बोली, कुछ पता चला मिस्टर सीक्रेट एजेंट, ये ब्लास्ट किसने करवाया था? उसकी बात सुनकर अमन के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो आंशी के करीब आया। उसे इस तरह अपने पास आता देख एक पल के लिए आंशी भी हड़बड़ा गई। वो उसके कान के पास आकर बिल्कुल धीरे से बोला, मासूम होने का दिखावा मत करो, तुम जानते हो इन सबके पीछे कौन हो सकता है बटरफ्लाई। अपनी बात कहकर अमन वहाँ से बाहर जाने लगा। वही उसने जो भी कहा उसे सुनने के बाद आंशी अभी भी सकते में थी। चार पाठ पलकर समीक्षा कर दीजिएगा।